ओम शांति। भारत की भूमि महान हस्तियों की भूमि रही है, दिव्य पुरुषों की भूमि रही है, और इस समय परमपिता परमात्मा ऐसी ही दिव्य हस्तियों के द्वारा विश्व के नवनिर्माण का कार्य फिर से भारतीय संस्कृति को विश्व के मंच पर उजागर करने का कार्य कर रहे हैं। और उनमें से एक हस्ती आदरणीय आशा दीदी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार हम सभी करतल ध्वनि से दीदी का स्वागत करते हैं। कल हमने दीदी जी के द्वारा कर्म योग की महानता को समझा था उद्घाटन सत्र में, और दीदी का पूरा जीवन ही मात्र 9 वर्ष की आयु के आप थे जब से आप ये कर्म योगी जीवन जी रहे हैं। आपने न केवल इस कर्म योग से अपने विद्यार्थी जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त की, आप अपने मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे, उसके बाद आपने अन्य आत्माओं को भी उनका जीवन संवारने के लिए भी एज अ लेक्चरर आपने कुछ समय तक अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद में मानव के चरित्र निर्माण के लिए आपने उस अपने पद से रिजाइन करके इन ईश्वरीय सेवाओं में अपने जीवन को समर्पित किया। और जो योग संयम हमें सिखाता है, वो संयम आज हमें आपके जीवन में वो संतुलन, वो विवेक, वो शक्ति, वो निष्काम भाव, वो निमित्त भाव हमें आज आपके जीवन में दिखाई देता है। और उन सबको लेकर के आप आज वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज के मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी हैं, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन विंग के और आईटी विंग के चेयरपर्सन भी हैं, और ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। तो हम सभी मिलकर के दीदी का तिलक के द्वारा और पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करते हैं। दीदी का अधिक समय ना लेते हुए हम दीदी के द्वारा आज जानेंगे कि कैसे ये ब्रह्मा कुमारी संस्था एक छोटे से समूह से परमात्मा द्वारा रची गई इतनी एक आज विश्वव्यापी संस्था बनी है, किन मूल्यों के आधार पर ये कार्य कर रही है और क्या कार्य कर रही है। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी,
ओम शांति। स्टोरी टाइम। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्टोरी, आप में से कितने हैं जिनको ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में सब कुछ पता है? तो थोड़े से हैं। कितने हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता? ओके। कितने हैं जिनको थोड़ा बहुत पता, लाइक सॉल्ट एंड पेपर? ओके, ठीक है। तो आज कोशिश करूंगी कि 90 वर्ष के इतिहास को 10 बजे के अंदर संपन्न करें। ये बात 1936 की है, जबकि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हैदराबाद सिंध में हुई थी, जिसको मगध देश कहा जाता था। तो आरंभ कैसे हुआ? जो इसके संस्थापक हैं, प्रजापिता ब्रह्मा जिनको हम कहते हैं, मैं बाबा शब्द यूज करूंगी। जब मैं बाबा कहूंगी तो इनके लिए, जब मैं शिव बाबा कहूंगी तो परमात्मा के लिए। तो बाबा माना पिता। तो आपका जो बाल्यकाल था वह कठिन था, मास्टर के बेटे थे लेकिन पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, तो काका ने पाला था। वे अनाज के व्यापारी थे काका, तो जब उनके साथ थे तो इन्होंने व्यापार सीखा छोटेपन से, और हृदय में रहम, करुणा, दया ये बहुत बसती थी। तो कोई गरीब आता था तो उसको अधिक अनाज तोल देते थे, तो जो वो था काका, उनको तो ठीक नहीं लगा कि तो गलत बात है बिजनेस के हिसाब से, लेकिन इनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र थी, तो कुशाग्र बुद्धि के कारण इन्होंने वहां से विड्रॉ किया और हीरे जवाहरात की परख का धंधा इन्होंने सीखा। हीरे जवाहरात के आप बड़े व्यापारी बने और इतना अच्छा व्यापार था जो कि राजाओं महाराजाओं के साथ संबंध था, नेपाल के राजा, उदयपुर के राजा, इंदौर के राजा आदि आदि, सम्मान भी बहुत है। सिंधी थे कृपलानी फैमिली और 5 इनके बच्चे थे जिसमें 3 कन्याएं थी और 2 पुत्र थे। तो बाबा भक्ति भाव वाले भी बहुत थे, विष्णु जी की भक्ति करते थे श्री नारायण की, और बाबा को माताओं के प्रति सम्मान भी बहुत था। तो कोई एक चित्र रहा होगा जिसमें श्री लक्ष्मी जी श्री नारायण जी के पांव दबा रही हैं, तो बाबा को अच्छा नहीं लगा कि विश्व महारानी श्री लक्ष्मी और वो ये कार्य कर रही है। बाबा ने आर्टिस्ट को कह के उसको कहा कि लक्ष्मी जी को निकाल दो यहां से, ऐसा ही ठीक नहीं। तो बाबा की जो डिजाइनिंग थी ज्वेलरी की वो बहुत सुंदर थी, और मैंने बताया कि कुशाग्र बुद्धि थे, इनोवेटिव क्रिएटिव, तो बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। अब चरित्र के बहुत उज्जवल थे, कहीं भी खड़े हो जाते थे तो अलग पहचान थी, ये सब कुछ उपलब्ध था, भक्ति थी। बाबा को कहा हुआ था आपकी आयु 60 वर्ष है, और इतना ही कहा था। तो बाबा की लाइफ में 60 वर्ष के पश्चात ही परिवर्तन आता है, वैराग। बाबा की डायरियां मिली हैं जिसमें बाबा ने मन बुद्धि को एड्रेस किया हुआ है, मन तू चंचल घोड़ा है, बहुत भटकता है, तो मेरा मन है, मेरा मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे करके बाबा ने वार्तालाप लिखा हुआ है। और बुद्धि को कहा तुम भी बेवफा हो जो तुम भी मन का साथ देती हो, ऐसे करके पूरी बाबा की वो कॉन्वर्सेशन। तो बाबा को जैसे कि बाल्यकाल ये 60 वर्ष की आयु के पश्चात से जो ये सारे विचार उठने शुरू हुए, तो बाबा ढूंढ मचा रहे थे। कभी काशी विश्वनाथ जाते थे, कभी कहाँ जाते थे, और अभी दिमाग में बहुत कुछ हलचल चलने शुरू हो गए, पुरानी दुनिया से वैराग्य जैसे आना शुरू हुआ। और बनारस में बाबा 6 महीने अपने मित्र की कोठी में रहे, वो कोठी मैंने देखी है, पहले तो बहुत बड़ी थी, गार्डन बहुत बड़ा था, चबूतरे बने हुए थे, लेकिन अभी तो कमर्शियलाइजेशन होता जा रहा है तो उन्होंने भी आधा लॉन जो है वो उसमें दे दिया है, बाकी जो है वो अभी कोठी अभी भी है। तो क्या होता है कि बाबा क्योंकि व्यापार अच्छा था, लोग अच्छे थे संबंध संपर्क में, रोज बाबा गीता का पाठ करते थे, गीता के बिना जल पान नहीं करते थे, ये सब चीजें थी। उनकी जो युगल थी, इनका नाम था जसोदा, जसोदा मैया, वो बाबा की जैसे वर्चुअली कोई पत्नी पूजा करती है ना, पुराने जमाने कहते हैं भाई पति तुम्हारा परमेश्वर है, तो वो जैसे बाबा की पूजा करती थी, कायदे से आरती उतारती थी, इतनी श्रद्धा भाव वाली थी। फिर तो शनि शनि परिवार बड़ा होता है, तो एक दिन बाबा के पोते की पार्टी थी, बाबा सात्विक थे, कभी मीट अंडा शराब ये सब चीजें नहीं थी, तो बहुत सात्विक पार्टी देते थे। लोग हंसते थे कि भी लखी बाबू पार्टी बड़ी फीकी रही। तो बाबा कहते थे, तुम तो मुझे कागज के नोट देते हो, मैं तो तुमको हीरे जवाहरात देता हूँ। तो बाबा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो इस प्रकार से एक दिन 12 गुरु किए हुए थे। एक दिन पार्टी थी पोते की, तो बाबा सभा में बैठे थे, गुरु लेक्चर दे रहे थे। तो धीरे से बाबा को हलचल मन में कुछ होती है और बाबा उठ करके अपने कमरे की ओर जाते हैं। अब गुरु लेक्चर दे रहा हो, कोई उठ के जाए तो तिरस्कार है, लेकिन बाबा उठ के गए तो बाबा की जो बहू थी राधिका, उनका नाम था, बाद में उनका नाम पड़ा ब्रज इंदिरा, तो राधिका उनके पीछे पीछे जाती हैं और जसोदा मैया जो बाबा की पत्नी वो भी उनके पीछे आती हैं। ऐसा क्या हो गया जो बाबा इस तरीके से गुरु की उसमें से उठ के आ गए? तो एक बाबा अपने कमरे में बैठे हुए थे, जैसे राधिका ने दलहीज में पांव रखा कमरे की दलहीज में, तो उनको दिखाई दिया बाबा पद्मासन में है। सारा कमरा उनको लाल लाल महसूस हुआ, कोई लाल लाइट नहीं थी लेकिन उसने महसूस किया सारा कमरा लाल लाल दिख रहा है। और आवाज आती है, निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो थोड़ी देर वो खड़ी रहती हैं, फिर देखती हैं कि बाबा ने आंखें खोली तो बाबा की आंखें जो थी बल्ब की तरह चमक रही थी और अश्रुधारा बह रही थी। बाबा कहते वो कौन था, वो कौन था? कोई लाइट थी, कोई माइट थी। ये जैसे बाबा को निराकार शिव ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हुआ फर्स्ट है। और उसके पश्चात जब ये साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने सोचा ये गुरु कृपा से हुआ है। तो बाबा ने गुरु को पूछा, अब जैसे आपको कोई बात पता ना हो, मैं आपसे पूछूं तो आपके चेहरे से पता लग जाएगा ना कि नहीं पता है। तो ऐसे ही बाबा को पता लग गया कि गुरु कृपा से नहीं हुआ, बात पूरी हो गई, खत्म हो गया। थोड़े दिनों के बाद बाबा को दूसरा साक्षात्कार होता है विष्णु चतुर्भुज का, और आवाज आती है, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी ये हो। तो एक साधारण गृहस्थी बाबा परेशान होते हैं कि जिसकी मैं आराधना करता हूं, पूजा करता हूं, वो मैं कैसे हूं? फिनिश्ड। फिर तीसरा साक्षात्कार होता है इस विराट सृष्टि का, महाविनाश, एटॉमिक वॉर, सिविल वॉर, नेचुरल कलामिटीज के द्वारा बड़ा दर्दनाक सीन होता है। 1939 की वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो हिरोशिमा नागासाकी में डाला गया था बॉम्ब, लेकिन बाबा को ये साक्षात्कार 1936 में हो गया था कि एटॉमिक वॉर के द्वारा सृष्टि का होगा। तो बाबा डर जाते हैं, ये सब क्या है? फिर साक्षात्कार इमीडिएटली होता है स्वर्ग का, चौथा साक्षात्कार, जिसमें आकाश से सितारे आते हैं, धरती पे पड़ते हैं और राजकुमार राजकुमारियां बन जाते हैं। और स्वर्ग जैसे होता है, बहुत सुंदर सीन, शांति, प्रेम, ऐसा उन्होंने। और आवाज आती है, ऐसी दुनिया बनाने के निमित्त तुम हो। तो बाबा डिस्टर्ब होते हैं कि मैं तो एक साधारण गृहस्थी हूं, मैं ये दुनिया कैसे बना सकता हूं? फिर उसके पश्चात बाबा को और साक्षात्कार होते हैं, जो कि सारी इन जो है ना चार धाम उनके उनका एक एक आता है, आलिंगन करता है और देकर के जाता है वरदान तत्त्व। अब बाबा को सारे जो हीरे जवाहरात है, वैराग्य वृत्ति ऐसी जागृत होती है, अब पत्थर नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा का जो धंधा था वो हैदराबाद में था, मुंबई में था और कलकत्ता में था। तो कलकत्ता में सबसे ज्यादा न्यू मार्केट है, जो आज भी वहां पर है, चार्ल्स हॉक मार्केट, वहां पर बाबा की गद्दी थी। और उसके साथ साथ हम ये भी एक चीज थी जो कि बाबा का आज भी कलकत्ता में बीसियों दुकानें हैं जो लखी बाबू के नाम से चल रही हैं। लखी बाबू की सोने चांदी की दुकान, लखी बाबू की हीरे रत्नों की दुकान, ऐसे वो बाबा की नहीं है। लेकिन जैसे किसी को कोई नाम अच्छा होता है तो उसको यूज करते हैं, ऐसे वो अच्छा नाम उसको यूज करके लिखा लखी बाबू की। खैर बाबा ने, मैं शॉर्ट कर रही हूं, बाबा ने पार्टनर को बोला कि भाई अब मैं धंधा नहीं करना चाहता हूं और आपने जो करना है सो कर लो। तो पार्टनर जो था उसको लालच आया। पहले तो उसने बाबा को कहा ठीक है आप कैसे कर सकते, क्योंकि बाबा की कुशाग्रता से चलता। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाबा की बनाई हुई ज्वेलरी लंदन में जो क्राउन ज्वेल म्यूजियम है, जिन्होंने वो देखा होगा, उसमें रखी हुई थी। तो हमारी जो बाबा की बेटी थी ना दादी निर्मल शांता, जब वो देखने गई थी, मैंने भी वो देखा है, तो जब देखने गई थी तो वहां पर एक क्लिप था, हेयर क्लिप, जिसमें म्यूजिक बजता था। तो उसने पहचान लिया, तो सिक्योरिटी वालों ने कहा ए तुम ये आपको कैसे पता इसमें म्यूजिक बजता है, बोला ये मेरे पिताजी का बनाया हुआ है। तो क्वीन एलिजाबेथ थी तब, तो उन्होंने इनको बुलाया, बचपन से याद आ गया उनको भी, ऐसे उन्होंने अपने पैलेस में फिर इनकी आवभगत की। इस प्रकार से दादी ने हमें शांता बताती थी। तो पार्टनर ने भी चालाकी की और उन्होंने जो अच्छा पार्ट था वो खुद रखा, बाबा को वैराग है। तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, बाबा ने और वहां से बस चल दिए बाबा। अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, अलफ को आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। तो बाबा आ जाते हैं फिर से हैदराबाद में, बाबा की फैमिली साथ में होती है। अब बाबा जब हैदराबाद आते हैं तो गीता पढ़ते थे ना रोज, तो अभी गीता पढ़ते हैं तो नए नए बाबा को अर्थ समझ में, नए नए मीनिंग्स इमर्ज होते हैं। तो नए मीनिंग जो इमर्ज होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं आपसे बात करती हूँ, आप इनको बताते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ना है। तो हैदराबाद सिंध में उस समय समाज की जो हालत थी उसमें महिलाओं को कोई भी स्थान नहीं था, महिलाओं को एकदम पांव की जूती और सब माना जाता था, तो कोई भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी। और जो पुरुष लोग थे सिंधी, उनके बिजनेस थे स्पेन में और उस साइड पर, तो वो वहां पर बिजनेस के लिए जाते। तो अब नेचुरली महिलाओं के पास ज्यादा टाइम हो गया, फ्री हैं, तो वो आती हैं सत्संग में और वहां ओम की ध्वनि लगाते थे। तो कल ओम की ध्वनि सुन रहे थे ना, ऐसे ओम की, तो ओम की ध्वनि लगाने के कारण से उसका नाम पड़ गया ओम मंडली, ओम मंडली। और इस प्रकार से ये होते हुए धीरे धीरे महिलाओं का ज्यादा हुआ, महिलाओं का ज्यादा। पुरुष लोग जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा हमारी महिलाएं तो बदल गई हैं, ये तो वैसी महिलाएं रही नहीं है, बड़ी सिंपल सादी और ऐसी हो गई हैं, प्रभु प्रेमी हो गई हैं और पवित्रता के व्रत में आ गई हैं। अब ये उनको सहन नहीं हुआ और उन्होंने सारे सिंधी समाज ने ऑपोजिशन स्टार्ट किया, ऑपोजिशन किया कि आप ये पवित्रता का ज्ञान नहीं दो, सत्संग है लेकिन पवित्रता का ज्ञान नहीं दो। तो बाबा कहते थे मैं तो नहीं देता हूं, ये तो आपकी गीता में लिखा हुआ है कामेशु क्रोधेशु, काम क्रोध नरक के द्वारा है, तो गीता कहती है, मैं तो गीता पढ़ के सुनाता हूं, सब लोग गीता पढ़ते हैं। तो इस कारण से, और मैं आपको बताऊं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की फाउंडेशन पवित्रता है, क्योंकि नई सृष्टि का निर्माण है। जब नई सृष्टि का निर्माण है तो उसमें तपस्या भी चाहिए, तो पवित्रता का बल भी चाहिए, त्याग का बल भी चाहिए। आम रीति से थोड़ी सत्यों की सृष्टि, देवताओं की सृष्टि पैदा हो जाएगी। देवताएं जो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, वो तो काम क्रोध के वशीभूत नहीं होंगे। तो ऐसी सृष्टि बनाने के लिए बीज कितना पावरफुल चाहिए। जिस चीज को दुनिया वालों ने कहा, साधु संत महात्माओं ने कहा असंभव, घर में रहते हुए गृहस्थी लोग आपस में रहते हुए पवित्र रहें, असंभव, आग और कपूर कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, ऐसे ही कहते हैं पुरुष और स्त्री इकट्ठे नहीं रह सकते जब तक ये आग ना लगे। लेकिन प्यारे भाई बहनों, ये कार्य परमात्मा का है, मनुष्य आत्मा का नहीं है। आज परमात्मा का कार्य है, परमात्मा के कार्य में पहली चीज ये है, मुझे आपको बताते हर्ष होता है, आज दो चार तो क्या 9 लाख परिवार हैं जो पवित्रता के व्रत में चल रहे हैं, 9 लाख परिवार, इससे भी ज्यादा होंगे। पवित्रता सुख शांति की जननी है, अपवित्रता दुख अशांति की जननी है। हम पवित्रता को क्या समझते हैं, नहा धो लिया, सफाई रख ली, ये ना, ये तो बाहर की पवित्रता है, अंदर की पवित्रता कहाँ है। तो ये जो चीज थी तो उसके कारण से बहुत एंटी हंगामी हुए, वहां पिकेटिंग हुई, क्या नहीं हुआ, खूब अच्छी तरह से कोर्ट तक लेकर के गए। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, परमात्मा के कार्य के आगे कौन टिक सकता है। इस प्रकार से ये हुआ। फिर सिंधी कम्युनिटी ने सोचा कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को वाइप ऑफ कर दें, खत्म कर दें। तो उन्होंने युक्ति रची। 1947 में पार्टीशन होता है और पार्टीशन के पश्चात भी 47 से लेके 50 तक, 5550 तक बाबा पाकिस्तान में ही थे। वहां के लोग बहुत प्यार से, बहुत संभाल से, हिफाजत से सारे परिवार को चला रहे थे। खुदा के बंदे इनको कहते थे, ये खुदा के बंदे हैं, कोई तकलीफ नहीं दी। लेकिन सिंधी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो गई थी तो उन्होंने कहा कि हम इसको वाइप ऑफ करेंगे, इस संस्था को खत्म करेंगे। तो उन्होंने युक्ति रची, बाबा को कहा, बाबा आप पाकिस्तान में क्यों हैं, भारत में आना चाहिए, हम भारत देश के हैं, भारत हमारा देश है, हम भारत आएंगे और हम आपकी सारी संभाल करेंगे, पूरा आपको मकान वगैरह लेकर के देंगे। ठीक है, बाबा ने कहा ओके। अच्छा, जब बाबा वहां से चले तो आपने हिस्ट्री हॉल कहीं होगा तो आप देखिएगा, पूरा जहाज भर के 350 भाई बहने आते हैं। और जब जहाज ओखा बंदरगाह पे आता है, मैंने वो स्थान भी देखा है, ओखा बंदरगाह पे आता है, वह एक व्यक्ति नहीं होता। अब आप सोचो 350 उनको लेके कहां जाएंगे, सामने कोई नहीं। बाबा को साक्षात्कार होता है कि तुम्हारे लिए माउंट आबू अच्छा है, तो वहां से ट्रेन पकड़ करके जामनगर से बाबा आबू रोड आते हैं, वो भी आप ट्रेन देखेंगे। आबू रोड आते हैं तो आबू रोड में बाबा दो बहनों को भेजते हैं, जाओ पता करके आओ भाई कौन सा स्थान यहाँ पर हमको मिल सकता है। 350 के लिए स्थान कौन बनाता है, परिवार के लिए बनाए जाते हैं, 350 के लिए थोड़ी बनाया जाता है। तो कहा भाई यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, माउंट में भरतपुर राजा की कोठी है, वो खाली पड़ी है, तो वहां आप लोग जा सकते हो। तो आगे भरतपुर राजा की कोठी में माउंट आबू, अभी वहां होटल बन गया, आप लोग देखिएगा, आप लोग अभी माउंट में है ना, तो कभी देखा वहां होटल बन गया है, लेकिन उसके सामने शमशान और ये सांप नाग बालाएं ये सब कुछ बहुत निकलते थे। अब हाँ, एक चीज मैं भूल गई बताना कि बाबा ने 14 वर्ष तक 1937 से लेकर के 1951 तक 14 वर्ष तक ज्ञान योग की भट्टी जिसको हम कहते हैं वो करें, जिसमें दादियों को पूरा मूल्यों से सजाना, वैल्यूज, चरित्र, पवित्रता, योग, इन सब चीजों पर हमारी बेसिक जो बातें हैं, हम आत्माएं हैं, शरीर नहीं, ये रूहानियत है, इसमें हमको व्यवहार करना है। दूसरा, कोई देहधारी का कल्याण नहीं कर सकता, केवल निराकार कर सकता है, वो हम सबका पिता है। तीसरा, आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। चौथा, पांच विकार ये हमारे शत्रु हैं। छठा, मांगने से मरना भला, कभी मांगना नहीं है। सातवां, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में पहले दीपक जगाओ। आठवां, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। इस प्रकार हमारी कुछ मेन धारणाएं, ये सब के ऊपर दादियों को ट्रेनिंग कहो, उनकी परवरिश कहो, हुई। और बाबा ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति एक ट्रस्ट बना करके, पांच बहनों की ट्रस्ट बना के उसमें समर्पण कर दी थी। बाबा ने समर्पण की तो बाबा के साथ साथ एक दो ने और भी समर्पण की, लेकिन आप सब समझ सकते हैं जहां 350 लोग रहते हों, कोई कमाई का साधन ना हो, इतने वर्ष हो तो आखिर तो कुआं भी खाली हो जाता है, तो ऐसे ही कैश बॉक्स खड़खड़ाने लगा। जब यहां माउंट आबू शिफ्ट हुए तो वहां पर भी कमी पड़ी, इधर शमशान सामने तो लोगों को आवाजें सुनाई देती थी, और उधर जो है नागबालाएं, फिर लोगों के मन में, जैसे कहते भगवान भी अपना वर्षा सोच समझ के देगा ना, तो कई थे जो कमजोर थे, उन्होंने देखा ऐसी हालत हो रही है, तो उन्होंने अपने, कहते हैं ना, जिस समय कन्या उदास होती है तो क्या होता है, उसके घर से भी बुलावा आ जाता है, ऐसे क्या बहू उदास होती है तो घर से, ऐसा ही था। तो वहां पर कईयों को बुलावा आया माता पिता का, आ जाओ तुम लोग कहाँ पर हो आदि। कई लोग तो जैसे झाड़ खूब हिलता है ना ऑटम में, अच्छी तरह पत्ते झड़ते हैं, खूब पत्ते झड़े, बीमार भी पड़ते थे, पैसा थे था नहीं दवाइयों का, और बताऊं आपको, खाने के लिए भी 15-20 दिन तो बहुत कठिन टाइम था। आधी ज्वार की रोटी मिलती थी और एक ग्लास लस्सी का 15 दिन। इस तरीके से बहुत डिफिकल्ट टाइम वो था। तो कईयों ने सोचा, अरे ये तो अभी खत्म हो रहा है पैसा, अभी हम लोग को रोटी पूछी जा रही है कितनी खाओगे, आगे चल के क्या होगा, इससे तो हम अपने घर चले जाएं तो अच्छा। तो कई लोग लौट गए, कई लोग लौट, लेकिन जो स्थिर थे, निश्चय बुद्धि थे, भगवान परीक्षा भी तो लेता है ना, तो परीक्षाओं में जो पास हुए वो स्थिर रहे, वो लगभग 150 के करीब रहे। उसके बाद फिर ये होता है, तो बेगरी पार्ट इसको हम कहते हैं, बेगरी पार्ट ये थोड़ा समय चलता है, लेकिन सब दिन होता एक समान। 5550 बाबा आते हैं और 1952 में बाबा ने सेवाओं का आरंभ किया। और सेवाओं के आरंभ में सबसे पहले, क्योंकि बाबा कहते थे बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, अगर मैं स्मोक करती हूँ और आपको कहूँ कि आप स्मोक ना करें, आप पे असर नहीं होगा। ऐसे ही बाबा ने कहा कि पहले खुद को परिवर्तन करो, तब सेवाएं शुरू की 1952 में। और सबसे पहले दो हमारी दादियां, दादी मनोहर इंद्रा और दादी आत्म इंद्रा, जो तपस्वी, ज्ञान सुनाने में अच्छी होशियार, इनको भेजा। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली में सिर्फ एक ड्रेस पहनी है और एक ड्रेस थैले में है, एक ड्रेस एक्स्ट्रा है, 3 ड्रेस, और शायद 10 रुपए या 50 रुपए दे के भेजा। बस उस समय तो उसकी वैल्यू बहुत थी, लेकिन उतना भेजा। अब इनके पास कोई स्थान नहीं था, दादियों के पास कोई स्थान नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी दिल्ली में, तो कहाँ जाएं? तो आकर के आप यमुना घाट पर, वहां पर आए। और यमुना घाट पे आप जानते हैं वहां पहलवान लोग भी रहते थे और प्रकार के लोग भी थे, खंडहर सी बिल्डिंग थी, उसमें रहे, तपस्या करती थी, लोग आते थे उनको सुनाती थी, चेहरे पे नूर था, चमकता था। तो दिल्ली वाले अगर बैठे हैं तो जानते होंगे लाला जगन्नाथ एक होते थे दिल्ली के सेठ। दिल्ली के सेठ लाला जगन्नाथ जी की माता जी रोज यमुना जी जाती थी। उन्होंने देखा ये बहनें लगती तो भले घर की हैं, सुकुमारियां हैं, यहां कैसे है, ये ठीक नहीं। तो वो उनको गौरी शंकर जी का मंदिर है ना चांदनी चौक में, वहां उनको ले जाते हैं उसकी धर्मशाला में। अब दादियां जो ज्ञान सुनाती थी वो ज्ञान सबको बड़ा अच्छा लगता था, तो गौरी शंकर जी के मंदिर में लोग भक्ति करने जाते थे, दादियां सत्संग करती थी, सारी पब्लिक बैठ के सुनती थी, बहुत अच्छा। तो वो मंदिर के पुजारी ने कहा, माता जी इन देवियों को कहीं ले जाओ, लेकिन ये सारे हमारे भगत जो हैं वहीं चले जाते हैं, आप इनको कहीं और ले जाओ, यहां से ले जाओ। तो फिर रोशनारा रोड पर या वहां पर नजदीक में कमला नगर के पास ही एक कमरा लिया गया, वहां पर ये लोग शिफ्ट हुए। परंतु इस दौरान बहुत गलत फहमियां शुरू हो गई, और उसमें एक गलत फहमी ये थी कि ये जो है जादू करती है, इनकी आंखों में जादू होता है और ये आंखों में सुरमा डालती हैं, उस सुरमे में जादू है, वो सुरमा इनको माउंट आबू से आता है। अब आप लोग ढूंढ लेना कहीं सुरमा मिले। और जो ये कहा कि ये जादू करती हैं, तो वास्तव में देखो भाइयों, हम लोग मॉडर्न एज में हैं, साइंटिफिक एज में, आज अगर जादू करना हो तो हम पब्लिक में थोड़ी बैठेंगे, इस तरीके से थोड़ी करेंगे। तो लेकिन लोगों के मन में, आप में से कितनों ने सुना है जादू करती है, सच सच बता दो। ये देखो कुछ लज्जा के मारे नहीं उठा रहे होंगे, लेकिन वो जादू कौन सा है? ज्ञान का जादू है, ज्ञान का जादू है। आप किसी को कहें, मेरे अपने ही पिताजी नॉन वेज थे, नॉन वेजिटेरियन थे, राधा स्वामी परिवार के थे। हमारी दादी बहुत कहती थी छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। सेवा केंद्र पर गए, शाम को गए और उनको कहा गया आपको ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, ये आपके जीवन का लक्ष्य है, ऐसा बनना है तो आपको अपने भोजन पर, रहन सहन पर अटेंशन देना होगा। बस बात समझ में आई? फर्स्ट डे से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तो जरूर दादी को लगेगा ना जादू कह रहे हैं। उन्होंने गुरु जी को लिखा, दयाल बाग वाले गुरु जी को लिखा, उनका उत्तर आया जो काम तुम इतने साल नहीं कर सकी वो इन्होंने कर लिया, तो अच्छा ही किया ना, अच्छा ही हुआ ना। खैर वो बात एक चीज है, ये चीज अभी हम लोग नशा मुक्ति अभियान कर रहे हैं सारे भारत में, और बहनों के कहने से बहनें समझाती हैं, और समझाने से वो नशा छोड़ देते हैं, बोतल तोड़ देते हैं, और कभी हाथ नहीं लगाएंगे। तो कोई जादू थोड़ी है, ज्ञान का जादू है, समझाया जाता है। कितनों ने छोड़ा? विद्यार्थी बहन 4 करोड़ से अधिक लोगों को अप्रोच किया है, उसमें से कितनों ने छोड़ा? रजिस्टर जो हमारे पास आंकड़े हैं, ये अभियान हम लोग चला रहे हैं, नशा मुक्त अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान, और एक भी भाई अथवा बहन इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का कोई नशा नहीं करता। नो ड्रग्स, नो नशा, नथिंग नथिंग। हम गर्व से कहते हैं, इन सब चीजों की आवश्यकता तब पड़ती है जब आत्मा अंदर से खोखली होती है, तो संतुष्टि करने के लिए इन सब चीजों के लिए जाती है। लेकिन जब आत्मा ज्ञान से संतुष्ट होती है, आनंद का, खुशी का अनुभव करती है, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आपको हंसी की बात सुनाती हूं। लोगों के मन में ये जो वहम कि ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं, तो एक सज्जन थे, मैं नाम नहीं सुनाऊंगी, एक सज्जन थे, वो कमला नगर में हमारा केंद्र है, अब तो शिफ्ट हुआ शक्ति नगर, तो वहां पर तिकोनिया पार्क था, तिकोनिया पार्क में वो भाषण कर रहे थे और हमारी बहनें खिड़की में बैठ करके सुन रही थी। मैं उनका भाषण करूंगी, कहते हैं देखो ब्रह्मा कुमारियों के पास कोई नहीं जाना, क्यों? ये जादू करते हैं, इनके यहां गुरुवार के दिन भोग लगता है, उस भोग में हलवा बनता है, उस हलवे में ही जादू होता है। एक माता थी, उसने सुना था कि नहीं जाना, लेकिन वो ट्राई करने के लिए गई गई। गुरुवार का दिन था, भोग लगा, भोग जब बंटा तो उसमें हलवा था, क्योंकि उस माता ने सुन रखा था कि हलवा नहीं खाना, तो उसने नहीं खाया। ला करके वो हलवा अपनी भैंस को डाल दिया जो खूंटे से बंधी हुई थी। भैंस को इतना जादू चढ़ा, जो खूंटा तोड़ करके वो इनके कमला नगर सेंटर पर पहुंच गए। और कमला नगर सेंटर जो था ना, उसकी सीढ़ियां ऐसी थी, सोचो ऐसा ऐसी ऐसी बात करते। दूसरी गलतफहमी जो ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में है कि इनके पास पैसा कहां से आता है। आप लोग भी सोचते हैं, हमारे पास पैसा आता नहीं है कहीं से भी, मांगने से मरना भला, हमारे फाउंडर ने सिखाया है, कहीं से नहीं आता। लेकिन जो भाई बहन बेनिफिशियरीज हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका लाइफ बदलती है, लाइफ में सिंप्लिसिटी आती है, फालतू खर्चे खत्म होते हैं। तो सोचते हैं जहां से हमको इतना फायदा मिला तो हम क्यों नहीं करें। तो ऐसे बॉक्स रखे होते हैं विद्यार्थियों के लिए, उसमें वो डालते हैं। कौन, कोई किसी के ऊपर बंधाए मानी नहीं है, कोई रेसीट सिस्टम नहीं कि आपको इतना देना है, नेवर। मैं नहीं समझती आपने कभी सुना होगा ब्रह्मा कुमारी चंदा मांग रही है, सुना नेवर। हमारा नियम नहीं है। तीसरी बात, जितने हमारे भाई बहने हैं चाहे वो घर गृहस्थ में रहते हैं चाहे सेंटर पर, 99.9% वर्किंग है। तो नेचुरल जो वर्किंग होगा जहां से उसको फायदा होता है तो कंट्रीब्यूट भी करता है। फिर मानो बड़ा कैंपस है वो बनना है तो हमारा ये परिवार है, जैसे ये ज्ञान सरोवर बना, बड़ा कैंपस है। तो दादी जी ने सारे भारत में चिट्ठी भेजी कि ज्ञान सरोवर में ऐसा ये ऐसा बन रहा है कैंपस, सारी क्लासेस है। आज से 30 साल पहले ये बना था, तो दादी जी ने भेजी कम्युनिकेशन, हर क्लास में आने वाला व्यक्ति 1 रुपया प्रतिदिन डाले। मानो मेरी क्लास में 30 आते हैं तो 30 में कोई डालेगा कोई नहीं डालेगा, कोई 1 डालेगा तो कोई 10 भी डाल देगा। इस प्रकार से मेरे पास मान लो 300 रुपए इकट्ठे होते हैं। अब मान लीजिए 400 सेंटर हैं तो कितने हो गए एक दिन में। इस तरीके से हमारे पास पैसा जमा होता है। फिर देखिए, जहां सेवा भाव होता है वहां पर आप हर जगह बचाने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमी करते हैं। दादी जी कहा करती थी, जहां आपका 10 लगता है वहां हमारा 5 लगता है, क्योंकि हम इकोनोमाइज करते हैं, भाई बहने खुद सेवा करते हैं। फिर इसके साथ साथ मान लीजिए मैं इंजीनियर हूं तो मैं कहती हूं, अरे दुनिया में मैं इतना कमाती हूं, मेरे कोई प्रोजेक्ट मिला है भले काम का है तो मैं, अगर रोटी कपड़ा मुझे मिल रहा है तो मैं अगर पैसा नहीं भी लेती तो क्या हो गया, सरेंडर कर दिया। किसी का बिजनेस ग्लास का है, कहता है मेरी तरफ से इतना ग्लास लगा दीजिए। किसी का बिजनेस लकड़ी का है, वो कहता है इतना लगा दीजिए। इस तरीके से परिवार के रूप से ये चलता है, इट इज अ फैमिली इंस्टीट्यूशन, क्लियर हुआ। फिर कई कहते हैं ये अमेरिका से पैसा आता है। अरे भाई हम अमेरिका से क्यों लेने लगे, हमारे भारत वाले कम है क्या, भारत वाले कम है क्या, और क्यों ले, हम क्यों लें, हमारी जरूरतें ही नहीं है, सिंपल लाइफ है, ऐश आराम लग्जरी हमारी निशानी नहीं है, किस लिए ले, बहुत अच्छा चलता है। इस प्रकार से ये हमारा सिस्टम है फाइनेंस का। और हर साल हमारे अकाउंट गवर्नमेंट को सबमिट होते हैं, हर साल वॉलंटरी है सब कुछ। अब मानो एक घड़ी के लिए आप लोग आए हो, अब आप लोग कई कई के मन में आता है, कुछ लोग पूछते भी हैं कि बहन जी हम यहाँ आए हैं, हम लोग रह रहे हैं, हम इतना यहाँ से स्वीकार कर रहे हैं, इतना सब कुछ हमारे लिए किया जा रहा है, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, वो भंडारी रखी है, आपको जो डालना उसमें डाल दो, मैं क्यों आपसे हाथ में लूं, मेरा मन मैला क्यों करूं। इस तरीके से तीसरी बात, इनके पास ये यंग यंग बहनें कहां से आती हैं? अब यहां से ये सब छोटी छोटी कन्याएं कहां से आती हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा नियम है हम राह चलती किसी भी कन्या को भाई को नहीं रखते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं दिल्ली में बैठी हूं, जिस स्थान पर मैं हूं वहां रोज कोई ना कोई किस्सा आता है, सुंदर से सुंदर महिलाएं ज्वेलरी से लदी हुई, आंखों में आंसू, दुखी, हमें यहां रख लो, हमें यहां रख लो, हम नहीं जाना चाहते घर। हमें रहम भी आता है लेकिन हम कर भी नहीं सकते हैं। हम उनको कहते हैं हम आपको रख नहीं सकते, हम उनको गाइड कर देते हैं। ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस है, नारी सुरक्षा समिति है, उस तरफ गाइड कर रहे, हम नहीं रख सकते। क्यों? स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड का व्यक्ति ही यहां रह सकता है। अगर स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड नहीं है तो यहां रह नहीं पाएगा, और ऊट पटांग काम किया तो बदनामी तो इंस्टीट्यूशन की होगी ना, इसलिए हम वो काम नहीं करते हैं। आने वाले मान लीजिए क्लास में परिवार के परिवार आते हैं, उनकी कन्याएं आती हैं, आती हैं, वो हमसे कहते हैं कि हमारी कन्या भी, हम चाहते हैं जैसे आप हैं ऐसे हमारी कन्या भी। हम कहते हैं ऐसे नहीं, आप कन्या को पढ़ाओ, कन्या पढ़नी चाहिए, पढ़ाई कन्या की संपत्ति है, वो जितना पढ़ ले उतना अच्छा है। हाँ, यहां पर भी आए, दोनों तरफ आए, वो भी पढ़ाई पढ़े, वो भी पढ़ाई पढ़े, दोनों पढ़े। फिर उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि कन्या के अंदर स्पिरिचुअलिटी के प्रति इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम पेरेंट्स को एडवाइस कर देते हैं, प्लीज इसको इस तरफ मत लगाना, और इसको जैसे आप शादी करना चाहो, सेट करना चाहो, कर लो। अगर स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड है फिर एनकरेज करते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में, रिगरस ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में सब बातें समझाई जाती हैं। उसके पश्चात फिर वहां माउंट आबू में ट्रेनिंग होती है, फिर वो सेंटर्स पर जाती हैं, वहां उनको चार सर्टिफिकेट लेने हैं, खुद का, पेरेंट्स का, टीचर का, और जिनकी सेवा करते हैं उनका, ये चार सर्टिफिकेट लेने हैं। अगर वो उसमें पास होती है फिर एडवांस ट्रेनिंग में बुलाते हैं, फिर उनका चलता है, जैसे आप डॉक्टर बनते हो 5 साल बाद, इंजीनियर बनते हो 5 साल बाद, ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी टीचर बनती है 5 साल बाद। अच्छी ट्रेनिंग होती है, रिगरस ट्रेनिंग होती है। इस प्रकार से ये है कन्याओं का, ठीक है। और चौथा तो मैंने बता दिया, घर गृहस्थ में रह करके कमल फूल के समान रहना है। आप कहते हैं भाई बहन बनाती हैं, ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती हैं, हम नहीं बनाते, आप खुद बनते हो। कैसे? आप श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो, दोनों जने, पति पत्नी दोनों जाते हो, क्या बोलते हो? तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये बोलते हो? ये तो नहीं कहते हम, आप सास ससुर में बहू आपकी, बोलते हो? नहीं बोलते ना, यही बोलते हो? तो आप तो खुद ही भाई बहन के रूप से खड़े हो, नहीं, हमारी यहाँ ये नहीं कहा जाता कि आप घर में रहें तो भाई बहन के रूप से नहीं, एक सेलिबेसी प्योरिटी के हिसाब से है, लेकिन आपके संबंध और प्यारे हो जाते हैं। पति पति ही है, पत्नी पत्नी ही है। जो आपका रोल है वो आपका रोल है, मात पिता है, बच्चे बच्चे हैं, लेकिन प्योरिटी से आपके संबंधों में और सुगंध आ जाती है और प्यार बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ती है और अधिक होती है। ठीक है, फिर और भी कुछ रहा? और भी कुछ रहा गलत फहमी? जी, कैसे खोले? हमारे यहाँ सिस्टम है वो ये है कि पहले हमको निमंत्रण मिलता है कि आप हमारे गांव में आकर के हमारे शहर में आके प्रदर्शनी करें, हमारे लिए ये सेवा करें। तो वो पत्र लिखते हैं, बहनें जाती हैं, प्रदर्शनी करती हैं, योग शिविर कराती हैं, कोर्स कराती हैं, उसमें से कुछ लोग निकलते हैं जो चाहते हैं कि हम इसको रेगुलरली करें। तो उसके लिए फिर वही के जो लोग हैं वे ही लोग मकान ढूंढेंगे, स्थान ढूंढेंगे और टीचर माउंट आबू से भेजी जाएगी, सारा कुछ उनको करना है। इस प्रकार से सारे भारत में केंद्र खुलते हैं, सिस्टम हमारा ये है। इसी तरीके से जो विदेश है, विदेश में हमारे 140 देशों में है, तो 140 देशों में भारतवासियों के लिए खोले गए, लेकिन वहां के लोगों को इतना अच्छा लगता है जो कहते हैं कि हम इसके हम भी लेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से ऊपर है, इसलिए चाहे मुस्लिम देश हैं चाहे क्रिश्चियन देश हैं, सब देशों में हमारे भाई बहन आपको दिखाई देंगे। ब्लैक्स की सेवा वाइट्स कर रहे हैं, लोग देख के हैरान थे। डॉक्टर जेम्स जोना आए थे जो यूएन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, उनकी सेवा वाइट्स कर रहे थे तो हैरान थे, ऐसे कैसे? हम वहां यूनाइटेड नेशंस हैं, यहाँ यूनाइटेड नेचर्स हैं। हम जब यहाँ विदेशी भाई बहन आते हैं ऐसा होता है जैसे कि हम सब एक परिवार के, वो भी समझते हैं हम भारतवासी हैं, इंडिया नहीं कहते भारत, तो हम भारत वाले हैं, भारत सबका तीर्थ स्थान है। कौन? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ये जो ज्ञान हम सुनते हैं ब्रह्मा के मुखारविंद से, परमात्मा ज्ञान इनका नहीं है, ज्ञान सागर परमात्मा है, परमात्मा इनके मुखारविंद के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। जो ज्ञान जब हम जीवन में धारण करते हैं तब हम कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, तब कहलाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ सिस्टम है शुरू से महिलाओं के द्वारा, बाबा ने सेट किया था और मुझे बताते हर्ष होता है कि अपने प्रकार की ये ऐसी संस्था है जो आज वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टोटली एडमिनिस्टर्ड बाय वेमेन, लेड बाय वेमेन, लेकिन हमारी यूनिट फैमिली है, हम केवल महिलाओं की सेवा नहीं करते हैं ना, फैमिली, महिला में फैमिली समाई है, तो हम फैमिली को डील करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो भाई लोग हमारे साथी हैं, भाई हमारे साथी हैं। देखिए, हम बहनों को तो ज्ञान योग ये चीजें पता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन की गवर्नमेंट्स के साथ होना चाहिए, अकाउंट्स होने चाहिए, ये होने चाहिए, तो इसमें भाई लोगों का हाथ है। तो हम भाइयों को अपने साथ रखते हैं, सहयोगी हैं, लेकिन लीडरशिप बेटों की है। ओके, अभी क्लियर हो गया सर? कोई डाउट रहा? हाँ, हम बहनों का, जैसे छोटी बहनें हैं, मैं भी हूं, हम लोग परिवार से संबंध नहीं तोड़वाते हैं। हम औरों की सेवा करने जा रहे हैं और अपने परिवार से संबंध तोड़ दें, क्यों? हम नहीं तोड़ते हैं, हमारे ये नहीं सिखाया जाता। आज भी मैं चाहूं वापस जाना, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। हम कोई बॉन्ड साइन नहीं कराते हैं, क्योंकि मूल बात है, अगर आपके यहां स्पिरिचुअलिटी नहीं रही तो रहने का फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। हमें बंदे थोड़ी इकट्ठे करने हैं ना। कई लोग कहते हैं कि और माता पिता हमारे पास भी आते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं, हम भी जाते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं, ब्रह्मा कुमारी के पास नहीं जाना, वो सारा कुछ तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लेंगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के। ऐसा कुछ नहीं है। आप यहां रहना भी चाहेंगे ना, हम नहीं रखेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है। और हम आपको रख के यहां करेंगे क्या? आपको रख के यहां करेंगे क्या? वह तो सेवा है ना सारा दिन, क्यों रखें? व्हाट्स द पर्पस? नथिंग। आप अपने घर में रहिए। कई लोग कहते हैं हमको यहीं रख लो, हमारे यहां सिस्टम नहीं है। हम कहते नहीं, आप जाओ वहां शोभायमान हो। आप अगर एक बदलेंगे, हम लोग से कहते हैं आपने स्कूल खोला, हम कहते हैं हम सारे ही अपने जो रिसोर्सेज हैं एक ही स्कूल में डाल दें। क्यों? आज हमारे 100 टीचर्स हैं, कोई 100 स्कूलों की सेवा करेंगे और वो एक ही स्कूल होगा। आज हॉस्पिटल है हमारा जिसको आप देखेंगे, तो हमारी है डेलीगेशन, और इसको सेंट्रीफ्यूगल, इसको बढ़ाइए। आज आप अगर वकील हैं, आप बार में बैठते हैं, तो आप 10 वकीलों की ओर सेवा करेंगे? अगर यहीं पर इकट्ठे हो जाओ तो कहां करोगे सेवा? नहीं, हमें अपने समान औरों की भी सेवा करनी है। इसके लिए हम जहां हैं वहां बहुत अच्छे हैं, वहां हमको अपनी सेवाएं करनी है। ठीक है? नहीं, हमारा स्ट्रक्चर है डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दोनों है। कैसे है वो मैं बताती हूं। माउंट आबू हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ने सारे भारत को डिफरेंट जोन्स में बांटा है। हमारे जोन्स बने हुए हैं, उन जोन्स की इंचार्ज होती है। उस जोन के अंतर्गत सब जोन होते हैं। मान लीजिए दिल्ली जोन है, अब दिल्ली में मान लीजिए हरिनगर एक क्षेत्र है, तो हरिनगर एक सब जोन हो गया जिसके अंतर्गत 100 सेंटर हो सकते हैं। तो सब जोन, सब जोन के बाद सेंटर्स, सेंटर्स के बाद सब सेंटर्स, सब सेंटर्स के बाद गीता पाठशालाएं, गीता पाठशालाओं के बाद क्लासेस, इस तरीके से है। तो सबका सिस्टम चलता है, जोन का फिर सिस्टम, जोन का कनेक्शन माउंट आबू से। देखिए, जब हम समर्पित हो जाते हैं तो पर्सनल लाइफ खत्म। निजी खर्चे कौन से हैं? हमारी सारी जरूरतें इंस्टीट्यूशन पूरी करता है। जो जरूरतें हैं सेंटर करेगा, इंस्टीट्यूशन करेगा, सेंटर की जिम्मेवारी होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, दारू, ये सब चीजें सेंटर देखता है। जब मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो इट बिकम्स द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ट्रैवलिंग है वो भी इंस्टीट्यूशन देखेगा, मैं कहां से लाऊंगी, मेरे पास तो नहीं है, आई एम नॉट अर्निंग। इंस्टीट्यूशन की सेवा कर रही हूं तो इंस्टीट्यूशन देखेगा। हाँ, उनके बारे में बाबा की एक लौकिक बेटी अभी भी है पुट्टू, जो कि मुंबई में है। बाकी बाबा ने अपने बच्चों को, नारायण थे, नारायण भाई छोटा बेटा था जो मुंबई में रहते थे, बाबा के पोतरे पोतरियां आगे वो हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई खास संबंध नहीं है। इंस्टीट्यूशन में दादियां थी तो आते जाते थे, अभी भी मुंबई में जो बहनें हैं उनके साथ उनका कनेक्शन है। बाकी जो बड़ा बेटा था उसने जल्दी शरीर छोड़ दिया था, तो ब्रजेंद्रा दादी बड़ी बहू थी, और उसके बाद फिर बाबा की दूसरी बहू नारायण दादा की युगल थी, उसका वो भी जल्दी शरीर छोड़ दिया था। नारायण दादा थे, और जो बेटियां थीं दादी निर्मल शांता, वो कलकत्ता में रहती थी, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, नेपाल, इन सबको वो देखती थी। उन्होंने भी मैं समझती हूँ 10-15 साल पहले शरीर छोड़ा है। और रत्ना एक थी जो बॉम्बे में ही रहती थी, तो उसने भी शरीर छोड़ दिया। तो कोई ऐसा है नहीं, पोतरे पोतरियां दूर के हैं। दादी माना होता है बड़ी बहन, बड़ी बहन नहीं, सिंधी में बोलते हैं बड़ी बहन को दादी, बड़ी जो बुजुर्ग होते हैं ना उनको दादी बोलते हैं, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। कैसे शिफ्ट हुए? उस समय बहुत कठिन टाइम था, पैसा था नहीं, कुड़की हो रही थी, लेकिन बच गए, भगवान है ना। तो कानपुर के एक व्यक्ति ने, उन्होंने बचाया, लेकिन वो एक, उसके बाद फिर हम दूसरी जगह भी शिफ्ट हुए थे, इसका नाम था जो सर्किट हाउस बना बाद में, ढोलपुर हाउस जो बाद में सर्किट हाउस बना, वो सरकार को चाहिए था, राजस्थान सरकार को चाहिए था, तो इसलिए फिर हमको वो खाली करना पड़ा। तो फिर अपना स्थान, ये पांडव भवन अपना स्थान ले लिया। ये भी आज जो आप पांडव भवन देखते ये नहीं था, मैंने तो देखा है शुरू का, एक छप्पर के कमरे थे, ज्यादा नहीं थे, मिट्टी थी, इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी, एक छोटा सा ही एरिया था, वो भी अभी सीमेंट का हो गया, पहले नहीं था, पहले तो बहुत ही शाबी था, लेकिन बड़ा आनंद था, हमें बहुत अच्छा लगता, हम लोग बच्चे थे आते जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो आज तो बहुत विस्तार हो गया, जैसे जैसे सेवाएं बढ़ी हैं तो विस्तार होता गया। ढोलपुर हाउस, कोटा हाउस, ऐसे हमने चेंज किया, ब्रिज कोटी से ढोलपुर हाउस, कोटा हाउस, ऐसे चेंज किया। इसका नाम जो पांडव भवन है ना, इसका नाम है पोकरान हाउस, ओरिजिनल नाम इसका पोकरान हाउस है। हाँ जी, राजस्थान के राजाओं की प्रॉपर्टी, वो सारा ज्ञान मेरे को नहीं है, इतना पता है भरतपुर राजा की जो कोठी थी तो भरतपुर राजा ने खाली करवानी थी, तो हमारी जानकी दादी और ऑलराउंडर दादी 84 कोस की यात्रा पर वो राजा गया था, वहां उससे मिली, वहां उससे बातचीत करके गए। ओके ओके, अब आपसे कोई पूछेगा तो अच्छी तरह से जवाब दीजिएगा, ठीक है?
तो अभी तो हम लोग यहाँ पर सुन भी रहे हैं और साथ साथ अनुभव भी कर रहे हैं, तो मन के सभी प्रश्नों का हल हो रहा होगा। और ये किस्से और कहानियाँ, और कहानी तो नहीं लेकिन रियल जो लाइफ है, दीदी ने पूरी इतनी लंबी यात्रा 90 वर्षों की इतने कम समय में हमें बता दी है, इसलिए दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।